बैठो, तुमसे बात करना चाहता हूँ।
मैं समझी तुम पहली ही बार से ही दादा जान को देखने आए हो।
इसका कोई फायदा है? तुम खुद भी जानती हो कि दादा जान अब वापस नहीं आ सकते। अब इन दुआओं से कोई फायदा नहीं।
वाकई तुम ऐसा ही सोचते हो?
मैं ऐसा नहीं सोचता, मेडिकल साइंस ऐसे कहती है। ना जान अब मर चुके
तुम
हैं।
कैसे इतनी आसानी से कह सकते हो वो मर गए?
इतनी आसानी से भी नहीं, लेकिन तुम भी तो यही समझती है कि तुम्हारी दुआओं का कोई असर नहीं होने वाला और एक बेनहमर बीमार नहीं ठीक हो
मैं
सकता।
मोजेजे की उम्मीद नहीं करती हूँ, लेकिन एक बात जानती हूँ, ये क्या खुदा मोजेजा भी कर सकता है। मैं चाहती हूँ कि तुम जान लो कि जिसके बारे में बात कर रहे हो वो दादा है। तुम कैसा ऐसा कह सकते हो वो मर गए?
मैं तभी कैसी बात कर रही हो? तुम समझते हो मैं उन्हें नहीं चाहता था और उनके मरने से खुश हूं?
अगर ऐसा होता तो तुम इतना ख्याल करते कि यहाँ आकर ऐसी बातें ना करते।
मेहताब, एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। एक बात पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल खुल कर बेतकल्लुफ जवाब देना। मेरे और अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा भी है? अरे तुमसे हूँ।
एक बात मुझे ही पूछने दो, तुम वाकई समझते हो घर में इतने अख्तलाफात के बावजूद हम दोनों फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं?
लेकिन तुम उन्हें बढ़ा रही हो।
वाकई?
फालतू में शरीफ बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारे ख्याल में क्यों तुम्हारे बाबा फैक्ट्री जाकर तमाम हिसाब किताब चेक करते हैं, बताओ?
क्या तुम नहीं जानते?
तुम उस औरत की बात अपने बाप से बताकर मेरे बाबा की बेइज्जती करना चाहती हो? अम्मी ने जब ये बात सुनी तो बहुत गुस्सा कर रही थी। तुमने सोचा भी है कि उसमें कितना हमारा नुकसान हो सकता है?
मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से शर्मिंदा हो, लेकिन अगर तुम ऐसा समझते हो तो मुझे बहुत अफसोस है। अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है सासान।
यही तुम्हारी आखिरी बात है ना? तुमसे कह रहा हूं, मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो तुम?
अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, कहाँ हैं आप? इफ्तार में कोरमा बनाया है आपके लिए। अरे नमाज पढ़ रही हैं अम्मी जान? अरे मैं कुर्बान जाऊं, अम्मी यहाँ जमीन पर बैठी रो रही है। आप क्यों अम्मी, क्या हुआ है बोलिए, क्या हुआ है अम्मी, है क्या हुआ है?
खुदा हाफिज। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि इस वक्त ना सरमद साहब हैं और ना हाजी के बेटे, अगर कोई बात हो तो फरमाएं, मैं उन्हें इत्तला दे दूंगी।
नहीं, मुझे सुल्तानी साहब की फैमिली में से किसी से बात करनी है।
तो फिर या तो इंतज़ार कीजिए या किसी और वक्त तशरीफ़ लाइए।
मुबिनी साहब आप खुशरामो हैं क्या?
जी नहीं, ये हाजी के नवासे हैं, ज़रूरी हो तो इनसे भी कह सकते हैं।
जी जी कोई बात नहीं, मैं ताज़ियत पेश करता हूँ।
शुक्रिया।
मैं रजवी हूँ, क्या आपका थोड़ा वक्त ले सकता हूँ?
क्यों नहीं जी, आइए।
माफ़ कीजिएगा जनाब, कुछ हफ्ते पहले हाजी फत्ता मेरे ऑफिस आए थे नए शॉपिंग सेंटर के कागजात के सिलसिले में। वो चाह रहे थे कि उन्हें दो लोगों के नाम करें।
दो के नाम?
जी हाँ, मोहतरमा जी हाँ, मोहतरमा मेहताब सुल्तानी और सासान के गालिबन आप ही हैं।
अच्छा, तो शॉपिंग सेंटर मेरो मेहताब साहब का नाम है।
मैंने कागजात तो तैयार कर लिए थे, आपके प्रूफ तो पूरे थे और आपका नाम भी लिखा जा चुका है, लेकिन मेहताब साहिबा के कागजात कुछ कम थे। हाजी ने कहा था बाद में लाएंगे और फिर साइन करेंगे, लेकिन अफसोस है
जी, अफसोस अफसोस जी, अफसोस है।
किसने यहाँ का एड्रेस उन्हें दिया था?
मुझसे रजायत लेने आए थे कि तुम्हारे बाप का दिल।
लीजिए इसमें से जरा पी ले। आखिर किसने कहा है कि आप इस हालत में रोजा रखें?
बच्चा सिर्फ एक साल का था, सिर्फ एक साल का।
मेरी जान आप पे कुर्बान हो, इतना परेशान ना हो। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, बैठिए। तुम किस सिलसिले में यहाँ भाई? तुम्हारे मामू को तो इसकी कोई खबर नहीं ना?
नहीं, अभी नहीं आए हैं।
अच्छा हुआ तुम उनसे कुछ कहना भी नहीं।
लेकिन क्यों?
इसलिए कि जरूरी नहीं है कि वो जाने कि वो मार्केट किसके नाम है।
क्या मतलब है आपका? ना जान के
ख्वाहिश थी। नाना ने जो चाहा वो सब पूरा नहीं। मैं उस आदमी से बात करता हूँ, देखूँ क्या ऐसा हो सकता है कि सितारे का नाम वहाँ लिख दिया जाए।
मजाक कर रहे हैं ना?
तुम्हारे नाम पर तुम्हारी बहन खाए बेहतर है।
शायद आप समझ नहीं रहे हैं इसका मतलब ये।
मैं खूब अच्छी तरह से समझता हूँ, तुम नहीं समझ पा रहे हो। तुम्हारे मामू घर के बड़े होने की वजह से यूं ही दोहरी जायदाद ले रहे हैं। अगर थोड़ा उसमें से तुम्हारी छोटी बहन को मिल जाता है तो क्या इसमें कोई बुराई है तुम्हारी नज़र में?
मुझे शिकायत नहीं है, मैं अपना हिस्सा सितारे का नाम कर सकता हूँ, लेकिन मेहता मेरी बीवी होने वाली है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता।
पहली बात तो है कि नीचे आवाज़ में बात करो। दूसरी बात यह है कि अगर तुम समझते हो कि तुम और मेहता शादी कर सकते हो तो ये ख्वाबो ख्याल है तुम्हारा। ख्वाबो ख्याल से मुस्तकबिल नहीं बनता मेरे बेटे, तुम्हें खुद अपने हाथ से मुस्तकबिल बनाना।
जी आपकी तरह ना जाएंगे ख्वाहिशों को ठुकरा कर।
बेवकूफ लड़के, तुम समझते क्यों नहीं मैं जो कुछ कह रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ मैं।
जी हाँ, हर काम चाहे एक बेनवा बदबख्त और जाहिल औरत से एक मिलियन की झूठी रसीद ली लेकर। समझे आप मैं कितना बेवकूफ था जो मेहताब को उस बात पर डांटता रहा कि आप पर तोहमत ना लगाए। मैं समझता था मेरा बाप एक शरीफ इंसान है। मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है बाबा, अपने ऊपर भी और आप पर भी, लेकिन मैं आपके जैसा नहीं हूँ।
बेवकूफ लड़के, अगर मुझे यकीन होता कि मेहताब से तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं मना ना करता कि उसके नाम पे कुछ हो जाए, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो तुम्हारा ही होगा असल में। लेकिन तुम कान खोल के सुन लो, वो तुम्हारी शादी नहीं करेंगे उससे।
बस अफसोस ही है।
हाँ सीमा बोलो, क्या हुआ, किसने उससे कहा? ठीक है ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं खुद आता हूँ, देखता हूँ क्या बात है। ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है किसने इनको बता दिया।
कह रहे थे कोई कमबख्त सखाई नाम का आदमी था जो हॉस्पिटल में शायद काम करता है, उसी ने यहाँ का एड्रेस दिया।
लानत उसकी जात पर, लानत हो उस पर जो जो भी हो। इफ्तार के बाद चल के देखते हैं कि क्या मामला है।
देखो तो कितना शरीफ बनने की कोशिश कर रहा है, दिल करता है जाकर दो हाथ धो तबीयत साफ हो जाए।
नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता कि कोई हॉस्पिटल वाला ये काम करे।
मैं तो कह रहा था कि अम्मी जान को तन्हा ना छोड़िए, सीमा साथ में रहते तो क्या हो जाता आखिर।
मैं खुद ही इसकी हकीकत मालूम कर लूँगा, उसको छोड़ूंगा नहीं, अगर वो जरीर आदमी मुझे मिल जाए छोड़ूंगा नहीं।
जरूर।
कितना वक्त है मेरे पास?
नहीं पता, लेकिन इससे कम ही जितना तुम सोच रहे हो।
तुम्हारे ख्याल में आफाक राजी हो जाएगी?
बहरहाल आसान फैसला नहीं है।
कितनी उम्मीद थी कि सिर्फ एक बार मुझे देख सकती ताकि उससे बात कर सकूं और कहूं माफी चाहता हूं, उसका हाथ पकड़कर चूमूं और कहूं कितना शर्मिंदा हूं कि एक बड़ी हकीकत उससे मैंने छुपाई थी। वो भी किससे? उससे कि जिसने जिंदगी भर कभी मुझसे झूठ नहीं कहा। बखुदा मैं कहना चाहता था लेकिन डरता था कि उसका दिल ना टूट जाए।
जानता हूं हाजी, जानता हूं।
उसने हर तरह से मेरा ख्याल किया। जब भी मैंने गुस्सा किया उसने हंसी से जवाब दिया, जब भी गिरा मुझे सहारा दिया ताकि मैं संभल जाऊं और फिर से खड़ा हो सकूं। हे अफसोस।
ठीक कह रहे, मैं हमेशा उनकी तारीफ करता हूं।
जब तक जवान थी मैं बहुत कुछ कर सकता था लेकिन नहीं किया। उसी के बकौल काम काम काम। जब अपनी जिंदगी के बारे में सोचा कि कहीं जाएं कुछ करें तो अफसोस। आफाक आफाक।
परी साहिबा,
खुदा की कसम अगर मुझे पता हो वो खुद ही उठकर आए हैं।
क्या हुआ बेटा? महताज बात क्या है?
पता नहीं, वो खुद ही आए हैं।
अगर मुझसे पूछो तो कहूंगा इसने ठीक किया। हॉस्पिटल कोई ऐसी बातों की जगह है?
काश सिर्फ इतनी ही बात होती। तुम मेरी मुश्किलों के बारे में क्या जानते हो?
ठीक है, लेकिन ऐसी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। नहीं सही जगह का इंतखाब किया और नहीं सही बात की। अगर चाहते हो सब ठीक हो जाए तो एक अक्लमंद इंसान की तरह उनके घर जाओ, उसके माँ बाप के सामने उससे बात
करो। तुम बिना बहराम क्या बताऊँ, उसकी माँ को मैं नहीं पसंद हूँ। अब बता, मैं भी ज्यादा उनसे खुश नहीं हूं।
तो क्या करोगे, अपना फैसला करवाना चाहते हो कि नहीं?
हेलो आरश, सलामुअलैकुम। मैं तो दोस्त के यहाँ हूँ। आज तो बिल्कुल मूड नहीं है। मैं कह रहा हूँ मूड नहीं है भाई, कभी और चलेंगे।
तुम अब भी आरश से मिलते हो? अभी तक उसे नहीं पहचाना है?
ज़्यादा नहीं मिलता हूँ, कभी कभी उसके साथ कॉफ़ी शॉप चला जाता हूँ।
कॉफ़ी शॉप जाना अहम नहीं है, ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। खुदा की कसम तुम्हारी ममानी की आधी परेशानी यही है तुम इनसे मिलते हो।
देखो बहराम, मुझे नसीहत सुनने का मूड नहीं है।
मैं भी नसीहत नहीं कर रहा हूँ, तुम खुद अक्लमंद हो बालिग हो, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, बोलूँ या नहीं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं।
माफ कीजिए, बगैर इत्तला के यहाँ आ गए। मुझे पता है कि आपके हालात अच्छे नहीं हैं।
अरे कोई बात नहीं, खुश आमदेद। इंजीनियर साहब कहाँ हैं?
असल में फारूक बहुत आना चाह रहे थे लेकिन एक जरूरी काम की वजह से दुबई जाना पड़ गया। अफशीन भी इन्हीं दिनों लंदन जाने वाला है, इसलिए आपके यहाँ आए थे। आपकी खैरियत लें, हाजी की तबीयत मालूम कर सकें और ये दोनों नौजवान भी एक दूसरे से मिल सकें।
जी तो कब माशाल्लाह कब जा रहे हैं?
क्या बताऊँ, تقریباً ایک آدھ ہفتے کے اندر، لیکن اس سے پہلے مہتاب صاحبہ سے ملنا چاہتا تھا۔ لیکن اگر برا نہ مانے تو میں سنا ہے کہ آپ پڑھتی ہیں کیا؟
آرکیٹیکچرل۔
کتنی اچھی بات ہے، میں نے انڈسٹریل ڈیزائننگ پڑھی ہے، تو اس لحاظ سے شاید ہم دونوں کے درمیان بہت ساری مشابہتیں ہیں۔
کیا آپ ہمیشہ اتنی جلدی نتیجہ نکالتے ہیں؟
اس کا مطلب جنگ، جنگ کا اعلان؟
جی نہیں، صرف ایک سوال تھا، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیا سوچیں۔
میاں بیوی بہت جلدی ایک دوسرے کی زبان سمجھ لیتے ہیں، اہم یہ ہے کہ دونوں ایک ہی سطح کے ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ افشین باہر رہتے ہیں، لیکن کبھی اپنے کلچر کو نہیں بھولے ہیں۔
جی، لیکن پری صاحبہ، کیا آپ نہیں سمجھتی کہ ان حالات کے بعد ایسی باتیں کرنا شاید زیادہ مناسب نہ ہو؟
معاف کیجیے خسرو صاحب، غلط فہمی نہ ہو، بحث بھی دوسری طرف نہیں لے جانا چاہتی ہوں۔ ضرور اس سے بہتر حالات بھی ہو سکتے تھے ہمارے آنے کے لیے، کم سے کم اس وقت کے جب شین کے بابا بھی موجود ہوتے۔ لیکن میں یہاں اس لیے صرف آئی تھی کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے بہتر پہچان سکیں۔
معاف کیجیے گا، لیکن مجھے لگتا ہے آپ کا مقصد ان باتوں سے کچھ اور ہی ہے۔
مہتاب بیٹا،
یہ بتا، کیا کوئی آنے والا تھا؟
نہیں، کسی کا انتظار نہیں ہے، معاف کیجیے گا۔
السلام علیکم مانی جان۔
وعلیکم السلام۔
خسرو مامو ہیں کیا؟
جی، لیکن پھر کچھ ہوا ہے کیا؟
کوئی خاص بات نہیں ہے، کچھ منٹ آپ اور خسرو مامو سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔
بات؟ لیکن کیسی بات؟
اگر اجازت دے تو بتاتا ہوں۔
دیکھو، ابھی ہمارے یہاں مہمان ہیں، آنے سے پہلے فون کر لینا چاہیے تھا۔
السلام علیکم مامو جان۔
تمہیں بیٹا، کوئی بات ہو گئی؟
نہیں مامو، میں صرف تھوڑی دیر آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔
تو اندر کیوں نہیں آ رہے ہو؟
شاید آپ کے یہاں مہمان ہیں، میں بعد میں آتا ہوں، چلتا ہوں۔
کہاں جا رہے ہو؟ یہ کیسی بات ہے؟ چلو اندر آؤ، چلو آؤ۔ خوش آمدید بیٹا، اندر آؤ۔ پری صاحبہ، افشین میاں، ساسان میرا بھانجا، پری صاحبہ بھی مہتاج کی ممانی ہیں اور افشین ان کے بیٹے۔
آپ کیسے ہیں؟ کیوں آپ کی امی نہیں آئی؟
ساسان، کیا ہوا، کوئی بات ہے؟
نہیں، کوئی بات نہیں ہے، شاید خبریں یہاں اور میں ہی بے خبر ہوں۔
بیٹا، ہمارے مہمان انتظار میں کھڑے ہیں، آؤ بیٹھو۔
نہیں مامو جان، میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا، معاف کیجیے گا انٹی، بغیر اطلاع کے آ گیا، آپ کو پروگرام
ساسان۔
معاف کیجیے گا محترمہ، آپ نے ٹھیک کہا تھا، نانا جان کے ایسے حالت نہیں ہے کہ ایسی باتیں کی جائیں۔
تم غلط سمجھ رہے ہو ساسان۔
ہاں، میں غلط سمجھ رہا ہوں، اصل مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔
ایک منٹ رک تو جاؤ ساسان۔
میں آپ لوگوں سے معافی چاہتی ہوں۔
کوئی بات نہیں، معاف کیجیے گا، شاید ہم ہی غلط وقت پر آئے تھے۔
میرے بھی کہنے کا مطلب، جو میں نے کہا کہ حالات مناسب نہیں ہیں، بالکل یہی تھا۔ بابا جان کی حالات ایک طرف اور مشکلات دوسری طرف۔ آج ہی کچھ لوگ میری امی کے پاس گئے تھے، ان کو دل کے ٹرانسپلانٹ کے لیے راضی کرنے کے لیے۔ یہ سن کر ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس وقت وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ساسان کا غصہ بھی صرف اسی وجہ سے تھا۔
کیسے کیسے لوگ مل جاتے ہیں واقعی۔
لیکن میرے خیال سے ساسان صاحب کی ناراضگی کی وجہ کچھ اور تھی۔
نہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں۔ اس کی عمر کا نوجوان جو کوئی خاص کام بھی نہ کرتا ہو اور زیادہ تر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گزارے، تو ایسا ہی ہوگا نا۔
خسرو میاں، آپ سب سے بہتر جانتے ہیں کہ برین ہیمریج کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جتنی دیر تک یہ بیماری چلے گی، آپ کی امی بھی بلا وجہ کی امید کرتی رہیں گی۔
میں بھی یہی کہتی ہوں، وہ چوٹ جو ان کے کل لگی تھی، وہ آج کی چوٹ سے زیادہ سخت ہے، لیکن میں چپ ہوں۔
آپ تو ان کے بیٹے ہیں، تو ان سے بات کیجیے نا۔
یہی مہتاب کو دیکھ لو، جب بھی ہاسپٹل جاتی ہے اور اپنے دادا کو اس حالت میں دیکھتی ہے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔
آپ کو تو ان حالات کو بہتر سمجھنا چاہیے۔
کیا آپ کو آپ کے دادا یا نانا یاد ہیں؟
नहीं, मैं बहुत छोटा था, मेरे ख्याल से 7 या 8 साल का।
तो फिर मेरे या सासान के जज्बात को नहीं समझ सकते।
तुम इस बारे में मत सोचो, मैं समझा दूंगी। मौत एक इत्तफाक का सामना करना पड़ेगा। चलो चलें, खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज।
मैम आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा।
आप माफ़ कीजिएगा।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
मुझे इसका डर है कि ये किस्सा यूं ही चले और कल परसों कोई और आकर ये बातें करे और खुदा ना खास्ता अम्मी जान को कुछ हो ना जाए।
तो हम क्या कर सकते हैं? देखा तुमने, ना वो राजी है कि वहाँ हम रुके हैं और ना राजी है कि हमारे साथ हैं।
अरे ऐसे कैसे चलेगा, देखना तो पड़ेगा कि आखिर ये है कौन, शायद कुछ कर सके, कोई शिकायत। मेरे ख्याल में सासान भी आ गए।
जी हाँ, सल्लमो तशरीफ लाए आपके।
वालेकुम अस्सलाम।
अस्सलाम वालेकुम।
क्या पूछ सकता हूँ कि इस वक्त तक तुम कहाँ थे?
जरूरी है?
ये कैसे बातें कर रहे हो तुम? इन्होंने पूछा कहाँ थे?
आपके भाई के यहाँ।
वहां क्या करने गए थे तुम?
जैसा आप सोच रहे हैं उस काम के लिए नहीं गया था।
अच्छा,
खुदा की पनाह, इसे हुआ क्या है, कुछ समझे?
हाँ समझ गया, जब भी वो आपके भाई के यहाँ जाता है तो उसे भड़काते हैं लोग। खाना पकाने की जरूरत नहीं है, जाकर देखो क्या हुआ।
आप ये सासान के मामले से वाकिफ थी और मुझसे छुपाया, सही ना?
मुझे यकीन है कि वो सीरियस नहीं है, वरना मैं पागल थोड़ी थी कि यहाँ आकर अपने आप को जलील करती।
जी नहीं, बहुत सीरियस है, बहुत जलील भी हुए। महसाब का रवैया क्या नहीं देखा आपने?
वो इतनी अहम नहीं है, इसकी माँ की बातें तो सुनी है ना।
अहम नहीं है मेरी अम्मी, अगर मेहताब मुझसे शादी करना चाहती है तो उसका ख्याल अहम नहीं है।
कहा तो अहम नहीं है, क्योंकि तुम्हें इसे मुतासर करना पड़ेगा। इस लड़के का रवैया तो तुमने देखा ही है।
जी लेकिन मैंने मेहताब के कमेंट्स भी सुने हैं।
ये भी उसकी माँ की दी हुई देन है।
शायद उसके बाप का जवाब भी आप जो जानती हैं वो भी अहम नहीं है।
कब से मर्दों की बातें सुनी जाने लगी है कि ये दूसरी बार हो।
वाह भाई वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
देखो मेरे बेटे, मुझे कहना ये है कि तुम सबसे ज़्यादा अहम हो, तुम इसे मुतासिर कर सकते हो और इसकी हार ले सकते हो।
मेरी माँ, ये मेरे बस में नहीं है। लेकिन ये बताएं, आप मेहताब से शादी के लिए इतना जिद क्यों कर रही हैं?
अरे मेहताब नहीं तो जो भी लड़की इंग्लैंड पहुंचेगी अंग्रेज़ों से बढ़कर अंग्रेज हो जाएगी, उसके बाद तलाक लेना और फिर उसकी आधी जायदाद, समझ में आया?
लेकिन वहाँ भी तो जायदाद तकसीम होने के मसाइल हैं और हक महर और दूसरी चीज़ें भी तो हैं।
हाँ लेकिन ईरानी लड़कियाँ इतनी आसानी से तलाक लेने के लिए राज़ी नहीं होती। मुझे ही देख लो, बरसों तुम्हारे बाप के साथ सहती रही, तलाक की बात भी की। अगर ईरान की लड़की तलाक लेना भी चाहे, इतना उसे इस कोर्ट उस कोर्ट दौड़ाते हैं कि पशेमान हो जाती है। इसके पास भी बहुत पैसे हैं, इसको जायदाद भी मिलने वाली है। और क्या कहूँ, और क्या जानना चाहते हो?
पागल लड़का, देखा क्या बेइज्जती करवाई उसने हमारी।
क्यों पागल है वो? इसलिए कि उसने हक की बात की थी। वो किस लिए ऐसे हालात में शादी की बात करने आए?
अच्छा तुम बकवास मत करो, तुम उससे बदतर हो।
अब मैं क्या कहूँ आपसे,
ये सब तुम्हारा कसूर है। जो उसे अंदर आने दिया, तुम जानते थे कि अगर वो अंदर आए तो वो कुछ कर डालेगा और बेइज्जती करवाएगा।
हाँ अच्छा किया, क्या तुम खुद ख्याल करती हो? हजार बार कहा है कि इस तरह की बातों का वक्त नहीं है, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो?
मैंने उनसे नहीं कहा था,
वो खुद ही आए थे। लेकिन अगर आपने अपनी बहन साहिबा से बात की होती और पूरी बात कर ली होती तो इस तरह हमारी बेइज्जती आज ना हुई होती।
इससे बढ़कर बेइज्जती क्या हो सकती है कि मेरा बाप मर रहा है और तुम्हारी मुमानी साहिबा शादी की बात करने चली आई।
शादी की बात?
अच्छा, आपको बुलाया नहीं था? अरे मतलब बुरा भी नहीं किया, ज्यादा शोर नहीं करना चाह रहे होंगे। हाजी फत्ता सुल्तानी मर रहे हैं और उनके फर्जंद नामदार उनकी मोहतरमा बीवी शादी का प्रोग्राम बना रहे हैं।
क्यों इतना बकवास किए जा रहे हो? ये कैसे मुमकिन है?
यकीन नहीं फोन करके पूछ लीजिए।
महताज खुदा के लिए बस करो, मैं आज बहुत ज्यादा परेशान था, बस करो।
यही तो है, बाहर की मुश्किल घर में लाया करो, अपने मसाइल के हल के लिए बिल्कुल नहीं सोचते।
ये बात अच्छी तरह से याद रखो कि आज की मुश्किल तुमने खड़ी की है, मैंने नहीं।
अगर तुमने इस लड़के को अंदर ना आने दिया होता तो ऐसा कुछ ना होता।
ऐसा दिखावा मत करो कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बात सासान की नहीं है, मेरी बात यह है कि खबर अगर अम्मी जान तक पहुँच गयी तो मैं कैसे उन्हें अपना मुँह दिखाऊंगा।
तुम अगर अपनी माँ के लिए परेशान हो तो मैं अपनी बेटी के लिए परेशान हूँ।
ये लो, सीमा का फोन है, क्या कहूँ मैं उससे?
मुझे दो, मैं खुद ही बात करूंगी।
कोई जरूरत नहीं है। हेलो।
बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया, शाबाश, वाकई ना।
सीमा, मुझे पता है कि तुम क्यों नाराज हो।
नहीं तो मैं नाराज कहाँ हूँ भाई, हम आजादार कहाँ हैं? हमारे बाप हॉस्पिटल में थोड़ी एडमिट हैं, सीधे शादी ही करवा देते, हम सबको भी बुला लेते।
तुम्हारी कसम सीमा, मेरे फरिश्तों को भी इसकी खबर नहीं थी। अगर एक मिनट मुझे मौका दो तो सब कुछ बताता हूँ मैं तुम्हें।
पूछ मत बोलिए, परेशान होने की भी आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आप सुनते जाइए, अपनी बीवी की बातें ज्यादा सुना कीजिए। ये बताइए, जब मेहताब और सासान की शादी की बात छेड़ी थी तो कैसे आपकी बेगम फरमा रही थी कि ये इन बातों का वक्त नहीं है, लेकिन आप हैं?
मेरी बात गौर से सुनो मोहतरमा, किसी से कोई मतलब नहीं कि मैं अपनी बेटी के बारे में क्या सोचती हूँ।
तुम अगर ज्यादा होशियार हो तो अपने बदतमीज बेटी को बोलने की तमीज सिखाओ, काबू में रहा करे। एक बार जब हमने नहीं कह दिया तो फिर अपना सर झुकाए यहाँ क्यों आया और हमारी बेइज्जती की?
मिल गया सुकून?
अब मेरा फोन काटोगी? अब मैं बताती हूँ क्या करती हूँ मैं। मुझे पता है कैसे तुम्हारी शामत बुलानी है मेहताज।
सीमा, फालतू में इतना गुस्सा मत करो, अभी अच्छा हो गया कि उसने फोन काट दिया तुम्हारा, हैं? मुझे पहले से ही अंदाजा था इसका, समझी? तुम्हारे बेवकूफ लड़के को भी समझा चुका था, लेकिन उसकी समझ में ही कहाँ आता है, बस आशिक है ना भाई।
बाबा।
हाँ बेटा।
भाई जा रहे हैं।
कोई बात नहीं बेटा, तुम कुछ ना कहो, अपनी माँ के पास जाओ।
मेरा नाम भी सीमा नहीं है अगर तुमसे हार जाऊं।
कहाँ?
जहन्नम भी जाऊं तो यहाँ से बेहतर है।
अच्छा
जी,
ठीक है, गेट कीपर को सलाम
करो। तुम कहाँ जा रहे हो?
तुमने बताया ही नहीं कि हुआ क्या, फिर एक दूसरे से लड़ पड़े? ओहो, अच्छा, एक घंटा इंतजार करवा कर देखता हूं, ठंडी होने से पहले पी लो।
फोन उठा लो सासान।
अरे अभी तक वही हालत है, पीछे बैठो।
आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। The mobile set is off.
हेलो,
अस्सलाम वालेकुम बहराम साहब।
वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं?
माफ़ कीजिएगा इतनी रात गए फ़ोन किया है, मैं सासान की अम्मी हूँ।
नहीं कोई बात नहीं जी, फरमाइए।
सासान वहाँ है क्या?
नहीं तो?
परेशान हूँ, वो अब तक घर नहीं आया। आपसे कोई बात हुई है उसकी?
असमें वो शाम में मेरे पास आया था, बहुत परेशान भी लग रहा था, कुछ देर यहाँ रुका फिर चला गया। अपनी मामूजात बहन की बात कर रहा था, उनसे कोई लड़ाई वड़ाई हुई है, शायद उन्हीं के यहाँ जाकर बात करने वाला था।
आपके पास फिर आएगा?
आप परेशान ना हो, कोई बच्चा थोड़ी है। मैं अपने कुछ दोस्तों से बात करता हूँ, कोई खबर मिले तो आपको बताता हूँ।
बहुत शुक्रिया।
कोई बात नहीं, खुदा हाफिज।
अरे ये लड़का कितना लापरवाह है।
अब चुप भी करो। हेलो जी, क्या? सलाम अलैकुम बहराम साहब। हाँ यहाँ है।
एक मिनट होल्ड करिए।
सासान उठो, तुम्हारे दोस्त बहराम कह रहे थे अगर सो भी रहा है तो उसे फोन दो, पकड़ो।
हेलो, ये क्या बचपना है? क्यों अपने घर छोड़कर बाहर रह रहे हो? अपना मोबाइल क्यों बंद कर रखा है? इसी वक्त यहाँ आ जाओ या फिर मैं आता हूँ तुम्हारे पास।
देखो बहराम, बिल्कुल मूड सही नहीं है मेरा। हाँ मैं ठीक हूँ।
ठीक है, अपनी माँ को फोन कर लो।
नहीं करूँगा, अगर फोन किया तो एक घंटे में ही नसीहत करेंगे। डरो मत, कल तक उन्हें कुछ नहीं होगा, कहीं तुमसे मिल लेंगे। खुदा हाफिज। तुम्हारा नंबर उसे कैसे मिला?
मुझे क्या पता, कल सुबह तक मेरा नंबर तुम्हारी अम्मी के पास भी होगा।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम बहराम मियाँ, कैसे हो बेटा? मिल गया? कहाँ है? तबीयत, उसकी तबीयत कैसी है? खुदा का शुक्र। क्या वहाँ का नंबर मुझे दे सकते हो, मैं खुद ही फ़ोन कर लूँ? ठीक है, जैसा मुनासिब समझो। खुदा के लिए उसका ख्याल रखना, इसमें बहुत बचपना है। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा तुम्हें तुम्हारी अम्मी के लिए महफूज रखे। शब बखैर, माफ करना डिस्टर्ब किया। खुदा हाफिज। खुदा का लाख लाख शुक्र। हाय,
सलमो मिलेंगे नहीं?
हाँ, आपको तो परेशानी से नींद भी नहीं आ रही थी ना।
ओफो, रात में फास्ट फूड मत खाओ भाई।
तुम ही कह रहे थे तुम्हें फोन कर रही थी, तुमने नहीं उठाया, तो उसे अपने बात कहने दो। शायद ये गलतफहमी हो बस, और शायद
गलतफहमी, शायद सब लोग आसानी से एक दूसरे से झूठ बोल सकते हो, लेकिन आंखें कभी नहीं झूठ बोलती।
फूल ले जाने का मतलब मंगनी नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हारे नाना जान हॉस्पिटल में हो और तुम्हारे मामू किसी को मंगनी के लिए बुलाएं? और मेहता भी किसे मांग सकती है, तुम तो उसे पहचानते हो।
मैं समझता था कि पहचानता हूँ, नहीं पहचाना था, ये मेरी बेवकूफ़ी थी।
चलो 1% मान लो कि तुम्हारी गलती है, इस गलती की वजह से एक और बड़ी गलती मत करो, और उस वक्त शायद तुम कुछ भी नहीं कर पाओ। उसे एक मौका दो, उसे बात करने दो, आखिर में क्या होगा, वही जो तुम अभी सोच रहे हो, इससे बुरा तो नहीं है। लेकिन ये बात सोचो कि शायद दूसरा रास्ता भी हो।
हाजी साहब, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तुम खुद ही मेरी रहनुमाई करो, तुम खुद ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ।
इसीलिए मैं नहीं ला रही थी अम्मी जान, आपने तो कहा था कि परेशान नहीं होंगी।
मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ।
उठिए चले।
मैं आफाक को अच्छी तरह जानता हूं, इसका मतलब यह है कि वो भी अपने आप को तैयार कर रही है।
तुम हशमत का घर जानती हो?
नहीं तो किस लिए?
मैं उसकी बीवी से मिलना चाहती हूँ।
इस वक्त?
हाँ, तो इस वक्त जाने में परेशानी क्या है, इतने दिनों में कहाँ जा पाई हूँ। हशमत ने हमारे लिए बहुत जहमत उठाई है, उसका हम पर एहसान है।
मुझे उसका एड्रेस मालूम नहीं है, लेकिन शायद भाईजान को मालूम हो।
ठीक है, फोन करके पूछ लो।
मैं नंबर डायल करती हूँ, आप खुद ही उनसे बात करके ले लें।
खुद क्यों नहीं पूछ रही हो, फिर कोई बात हो गई है क्या?
हाँ, एक बात है, लेकिन रहने दें।
क्या हुआ मुझे बताओ। समझ गई, फिर मेहताब और सासान की बात हो गई है।
बेल हो रही है, आप बात कीजिए, फिर बाद में मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, आप बात कीजिए ना।
सलाम अलैकुम मैडम, खुश आमदीद।
वालेकुम सलाम, खुदा तुम्हें सब्र दे।
बहुत बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम, खुदा तुम लोगों को सब्र दे।
बहुत बहुत जहमत की आप लोग यहाँ आई।
सलाम अलैकुम।
सलाम अलैकुम मैडम।
सलाम अलैकुम,
खुश आमदीद मैडम, खुश आमदी, खुश आमदी।
खुदा तुम्हें सब्र दे मेरी बेटी। फातिमा बीबी मुझे माफ करना, हम बहुत लेट आए हैं यहाँ, लेकिन खुदा जानता है कि आपके गम में हम शरीक हैं। हाजी के उन हालात की वजह से इससे पहले नहीं आ सकती थी।
ये कैसी बात है मैडम, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है।
खुसरो साहब अपनी अहलिया के साथ उनकी फातिहे की मजलिस में आए थे।
हम लोग भी आना चाह रहे थे, लेकिन अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी।
मुझे माफ़ कीजिएगा मैडम, आप खुद भी ताकतदार हैं और आपकी हालत भी मुझसे बेहतर नहीं है,
لیکن آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں کہ حشمت کے حق میں برا نہ سوچیے گا، چونکہ وہ بھی بے قصور تھا، وہ خود بھی اس کا شکار ہوا ہے، خدا کے لیے اسے معاف کر دیجئے میڈم۔
یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ حشمت صاحب ہماری فیملی کے ممبر تھے، دو تین ہفتے پہلے حاجی نے کہا تھا کہ آپ اور حشمت صاحب کو حج پہ بھیجنا چاہتے ہیں، شاید اس طرح حشمت صاحب کی محنتوں کا تھوڑا سا ازالہ ہو سکتا۔
خدا کا شکر کہ یہ بات یاد تھی۔
میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتی ہوں کہ حاجی صاحب کی بات پوری کر کے رہوں گی، وہ مرحوم تو نہیں جا سکے لیکن آپ بچوں کے ساتھ ان کی طرف سے زیارت کر لیجیے گا، لیکن آپ کو بھی حشمت صاحب کی روح کی قسم دیتی ہوں کہ حاجی صاحب کے لیے دعا کیجیے۔